करती है ऐसा और समझ में आता है तो बार आदमी कहता है कि दूसरे का स्पर्श ही नहीं कर स्पर्श करके कहते हैं कि स्पर्श नहीं करते कार्य कर रहा है पारा पारा को भी हाथ में रखा जाए उसको पकड़ने की कोशिश की जाए तो पकड़ना नहीं कहता यह आता कहने में आता है कि द्रव्य का अनुभव पर्याय करती है लेकिन वास्तविक तत्व तो यह है कि पर्याय का ही अनुभव करती है पर्याय को द्रव्य का अनुभव हो जाए तो अपरिणामी परिणाम में आवे तो अपरिणामी का अनुभव हो सकता है लेकिन अपरिणामी परिणाम में आता ही नहीं तो अपरिणामी का अनुभव कैसे करे लेकिन परिणाम अपने द्रव्य की रचना करके अपने द्रव्य का अनुभव करती है एक अलग विषय है बाद में जब उसी करेगा तो अपन उसकी चर्चा करेंगे अतः सभी जल चेतन सत्ता है विकारों से शुद्ध है आत्मा भी एक ऐसी स्वयं निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य सत्ता है श्रद्धा ज्ञान चरित्र आनंद आदि उसकी असाधारण शक्तियाँ अथवा स्वभाव है जो शाश्वत उसी में रहते हैं द्रव्य स्वभाव चैतन्य सत्ता जो निरपेक्ष शुद्ध है स्वयं सिद्ध है उसके सारे के सारे गुण भी शाश्वत उसी में रहते हैं वह अपने में परिपूर्ण एवं अन्य से अत्यंत भिन्न है अतः वह एक शुद्ध एवं स्वतंत्र तत्व है क्योंकि जो तत्व अथवा सत्ता है वह स्वतंत्र पूर्ण एवं पवित्र होना ही चाहिए अन्यथा वह सत्य है सत्य किसे कहते हैं जो स्वतंत्र हो जो पूर्ण हो जो पवित्र हो उसका नाम सत्य है यदि द्रव्य सत्य है तो स्वतंत्र है पूर्ण है और पवित्र है पर्याय की एक समय का सत्य है तो स्वतंत्र है सत्य समय की पूर्ण योग्यता लेकर परिणती है उसको किसी से किसी प्रकार का आदान प्रदान होता नहीं है उस पर्याय का कोई संप्रदान अपादान अधिकरण आधार से होता नहीं है और वो पर्याय भी पवित्र है हमें उस पर्याय को अपने परिणाम के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर्याय में पवित्रता सुखता की बात नहीं है पर्याय अपनी योग्यता से दूसरे की अपेक्षा बिना सब समय परिणति है तो पर्याय की पूर्ण पवित्र और स्वतंत्र है अन्यथा वह सब कैसा दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो जड़ है वो पूरा जड़ हो एवं चेतन पूरा चेतन अपूर्ण जड़ अथवा अपूर्ण चेतन का स्वरूप भी क्या हो अतः भिन्नत्व पूर्णत्व एवं एकत्व सत्य का स्वरूप ही है भिन्नत्व पूर्णत्व एवं एकत्व ये सत्य का स्वरूप है विश्व के दर्शनों में जैन दर्शन का यह एक मौलिक अनुसंधान है अपने अनुसंधान में उसने कहा यानी कि गुजर ने कहा कि वस्तु का एकत्व ही उसका परम सौंदर्य है संबंध की वार्ता भी संवाद है वस्तु का एकत्व ही माने चेतन चेतन में बसे यही चेतन का परम सौंदर्य है पर चेतन का जड़ के साथ में कुछ भी संबंध ये वार्ता भी संवाद है हो नहीं सकता चेतन का जड़ के साथ में कोई सुबह मिलने का जड़ भी चेतन हो मुझे चेतन की दरकार ये वो अनुभव कोई नहीं प्यारे कभी ना ये व्यवस्था नहीं है जड़ को चेतन के साथ में और चेतन को जड़ के साथ में कोई भी आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार का संबंध नहीं है क्योंकि जीव यह कहता है कि कर्म के कारण मैं दुखी हूँ कर्म के कारण मैं जगत में रुलता हूँ तो उसे जड़ चेतन की व्यवस्था क्या है वो ही पता नहीं उसने चेतन को जड़ मान रखा कर्म के कारण कोई सुखी दुखी होता ही नहीं है थोड़े संयोगों की वार्ता भी नौ कर्मों के संयोगों की वार्ता है आत्मा का कोई संयोग नहीं होता चेतन को जड़ का क्या संयोग हो सकता है यदि चेतन को संयोग है तो प्रति समय उत्पाद देने वाली जो पर्याय है वह उनका संयोग है क्योंकि गुण तो आत्मा से अभेद है और भिन्न पर्याय ये उनका संयोग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अलावा और कोई भी संयोग भाव उदय भाव चेतन के साथ में कोई भी संबंध नहीं रहता। विश्व के प्रत्येक पदार्थ के दो अवयव है, एक उसके अनंत शक्ति में घूम करता जिसे द्रव्य कहते हैं और दूसरी उसकी प्रति समय बदलने वाली क्रिया है। आत्मा पदार्थ के भी इसी प्रकार के दो अवयव है, एक इसकी श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तिमय ध्रुव शुद्ध एवं पूर्ण श्रद्धा एवं दूसरी उसकी श्रद्धा ज्ञान आदि पर्याय मानने जाने आदि रूप पर्याय। शरीर पदार्थ के दो अवयव होते हैं, शरीर पर जड़ और चेतन दो पदार्थ है, सिर्फ दोनों पदार्थ की स्वतंत्रता बतलाई, उसका पूर्णत्व बतलाया, उसका असत्पना बतलाया, उसकी प्रचुरता बतलाई। अब वो दरित पदार्थ जो है चाहे जड़ हो चाहे चेतन, उनके दो अवयव होते हैं, एक द्रव्य और एक प्रमेय। अब आत्मा पदार्थ जो है उसके भी इसी प्रकार से दो अवयव है, एक उसकी श्रद्धा ज्ञान आदि आदि आनंद आदि अनंत शक्तिमय ध्रुव शुद्ध पूर्ण सत्ता और दूसरी जानने मानने वाली पर्याय। आत्मसत्ता का ऐसा परिशुद्ध स्वरूप स्थापित हो जाने पर आत्मा की श्रद्धा ज्ञान यानी कि जानने मानने वाली पर्याय वृत्ति का केवल एक ही क्रम रहा कि वह आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने एवं ऐसा ही अनुभव करे और अन्य सभी संकल्प पदार्थों को अपने से भिन्न जाने। चेतन पदार्थ कहता है अनंत शक्तिमय ध्रुव परिपूर्ण सत्ता और दूसरी ओर उनकी जो पर्याय है श्रद्धा ज्ञान की, जिनका काम है मानना और ध्यानना, करना उसका काम नहीं है, तो करते समय की कोई चर्चा ही नहीं है और उठाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो कहना ही नहीं है। उसका काम है जानना और मानना। अब जानना और मानना की जो पर्याय है उसको क्या है जानना और मानना, क्योंकि उसका एक ही काम रहा कि वो आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने, ऐसा ही अनुभव करे। तो उसका काम इतना रहेगा जैसा अपना विकारी रूप चैतन्य सत्ता है वैसा माने वैसा जाने वैसा अनुभव। इसके अलावा पर्याय कुछ कर भी नहीं सकती। पर्याय के अंदर में दो कार्य होते हैं, चाहे तो वैसा जाने और माने, चाहे तो ऐसा न जाने और न माने। जाने और माने तो उसका नाम सुनने तत्व नहीं किया और न जाने और न माने तो उसका नाम निश्चय तत्व नहीं किया। गुरुदेव जी ने एक बार ऐसा कहा कि आज गुरुदेव परमात्मा का ओम भरी में ऐसा आया कि अनादि अनंत ज्ञान के अंदर में दो क्रियाएं होती हैं, ज्ञान का ज्ञातृत्व या ज्ञान का अज्ञातृत्व। ज्ञान में जाए कहूं ऐसा जाने या मैं जाए कहूं ऐसा नहीं जाने, इसके अलावा ज्ञान कुछ कर नहीं सकता। अपने आप को परमात्मा जाने या परमात्मा न जाने, बस इतना ही ज्ञान का कार्य है। जाने तो उसका नाम समय ज्ञान और न जाने तो उसका नाम निश्चय। मैं परमात्मा हूँ ऐसा माने तो उसका नाम आत्मदर्शन समय दर्शन और ऐसा अदर्शन ऐसा दर्शन न करे जिसका नाम अदर्शन उसका नाम निश्चय। इसके अलावा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। पर्याय कितना भी विकसित परिणाम करे लेकिन उस पर्याय में होता क्या है? यदि उसने विकसित माना तो विकसित हो गए, शरीर को मेरा माना तो शरीर मेरा हो गया, कर्म को मेरा माना तो कर्म मेरा हो गया, राज्य को मेरा माना तो राज्य मेरा हो गया। हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। भविष्य का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि 5 तोला सोना और 5 तोला पीतल, अब दोनों को मिला दिया गया, दोनों चीजें हैं, दोनों को मिला दिया गया और मिलाकर वजन किया गया तो वजन कितना होगा? 10 तोला सोना 5 तोला पीतल, वजन 10। तब के जो 10 तोला जो वजन हुआ उसमें सोना कितना पीतल? सोना 10 हो गया, पीतल 10 हो गया। अब एक जगह पे एक क्षेत्र में आए तो दोनों ही हो गए, सुना सुना ही रहता और पिक्चर पिक्चर ही रहता, कुछ होता ही नहीं है, आता है जाता ही नहीं। वो माने कुछ भी मानने को तो ऐसा नहीं पड़ता, मानने को सर्वदाय सोपराज नहीं आता, मानने को पर्याय आत्मा में नहीं चली जाती, मानने को द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता, माने कुछ भी मानने के लिए स्वाधीन सत्य है, अपनी योग्यता से परिणाम की है, उसको परिणामाने वाला इस क्षेत्र में कोई नहीं है। तो उसका कार्य तो है जो उसकी वृत्ति का केवल एक ही काम रहा, एक ही काम, देखिए आप पढ़िए अंदर, वृत्ति का केवल एक ही काम रहा कि वह आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही मान ले, ऐसा ही जाने, ऐसा ही अनुभव करे, एवं अन्य सभी चेतन पदार्थों को अपने से भी जाने। किंतु आत्मा की वृत्ति में सदा से ही यह अज्ञान और अविश्वास रहा कि उसने अपने को शुद्ध एवं पूर्ण माना ही नहीं, अतएव अपनी पड़ोसी देहाती सत्ताओं में ही मुक्त रहे, उन्हीं में अहम किया एवं उन्हीं में जीता, पर सत्ताओं के अहम की यह वृत्ति महान गति जा रही है, क्योंकि इसमें विश्व की अनंत सत्ताओं को अपने अधिकार में लेकर उनमें रमण करने की चेष्टा है। अतः विश्व की सर्वत्र विश्व की स्वतंत्र एवं सुंदर व्यवस्थाओं को समाप्त कर देने की यह हरकत विश्व का सर्व महान अपराध हुआ और इसकी दंड व्यवस्था में निगोज प्रयोग हुआ, सीधी सी बात है। एक और एक दो आपने एक जड़ पदार्थ के अंदर में अहम किया तो आपका अभिप्राय एक जड़ पदार्थ से अहम नहीं है, अनंत जड़ पदार्थ का अहम है। और ये अनंत अनुबंधी होने से इसका फल तो निरोध ही फलित हो सकता है। और जिसने यहाँ से अपने मुंह को मोड़ा उसका काम क्या है, अपने गुरु चैतन्य सत्ता को ही जाने माने और इसी में ही जीवन वस्तु तत्व दर्शन किसी का भी रूप रहता है। अब आगे कहते हैं जीव के अनादि अज्ञान का कारण वंशवाद, आज तक जो घटना घटित हुई सो तो हुई, लेकिन उसका इस अज्ञान का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो, परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लंबा एवं ऐसा भयंकर अज्ञान क्यों रहा। वस्तु परिशुद्ध कांचन तत्व है, अनादि काल के अनेक प्रयत्न के बावजूद वस्तु जो भी क्यों रही है, अनंत काल निगोज में रहते हुए अनंत सूत्र में परावर्तन करते हुए भी वस्तु के अंदर में रंग मात्र भी फर्क नहीं पड़ा, अंतर नहीं पड़ा, ये परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लंबा एवं अपना भयंकर अज्ञान क्यों रहा, उसका उत्तर आत्मा से दूर कहीं अन्यत्र प्रवास करना एक दार्शनिक अपराध होगा। क्योंकि जीव सत्ता वस्तु में कारण कार्य भाव कभी भी घटित नहीं होता, जो जीव सत्ता है जड़ और चेतन और इसमें कार्य कारण भाव कभी घटित नहीं होता, तो उनका कारण अज्ञान का कारण यदि जड़ पदार्थ को खोजा जाए सर्वों को देखा जाए तो ये दार्शनिक अपराध होगा। हमें तत्व के दर्शन को उसने समझा नहीं, वस्तु व्यवस्था को उन्होंने समझा नहीं, इसलिए वो कारण कार्य प्रबंध पढ़ने खोजते रहता है, दोषारोपण पढ़ने करते रहता है। और जबकि व्यवस्था यह है कि जीव सत्ता वस्तु में कारण कार्य भाव कभी भी घटित नहीं होता, अतः उसका उत्तर स्वयं आत्मा में ही निहित है, गर्भित है, पूर्व यह है कि आत्मा ने सदा से स्वतः ही यह अज्ञान परिणाम किया और यह स्वयं ही अज्ञान ही रहा, स्वयं ने अज्ञान परिणाम किया और स्वयं अज्ञान ही रहा। और अज्ञान परिणाम माने क्या, अपने को ज्ञाय नहीं आना, अपने को ज्ञाय नहीं माना। अब जब कहना और माना नहीं तो दीपा की बात सही होती। फिर बाबू जी एक दृष्टांत देते रहे थे, जिसे एक लौकिक प्रश्न है कि महान बलशाली पराक्रमी एवं अतुल संपन्न एक सम्राट की महारानी दरिद्री महावत पर मुक्त क्यों होंगे। उसका कारण यदि हम महावत को माने तो सम्राट तो उसके सही बहुत अधिक है, फिर महावत का मुख कैसा। अतः पूर्ण अनुसंधान के बाद हमारा अंतिम समाधान यही होगा कि यह तो महारानी की अपनी स्वाधीन परिणति होगी। इसके मनोविलास का कारण भी अत्यंत पर निरपेक्ष नहीं है, कथन में कर्मोदय आदि की सापेक्षता आ जाती है किंतु भाव तो निरपेक्ष ही रहता है। कथन में कुछ भी आ जाए व्यवस्था ऐसी नहीं होती, व्यवस्था तो निरपेक्ष ही रहती है, क्योंकि यदि कोई दूसरा आत्मा को अज्ञानी बना रहे तो कोई ज्ञानी भी बना सकेगा और पुनः कोई अज्ञानी बना देगा, तो किसी के हाथ की शत्रुत नहीं ले जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा किसी के हाथ की शत्रुत मात्र ले जाएगा और उसके बंधुओं के सभी अधिकार छीन जा रही है और यह तो एक मखोल ही होगा, एक मजाक ही होगा। फिर एक प्रश्न यह है कि इतने लंबे एवं जटिल अभियान का अंत कैसे हो। तो ठीक है, चलिए भाई, अपने गुरु का, अपने अज्ञान का, अपने स्वभाव की ओर नहीं देखा, नहीं किया था, अपने में अपने को नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया। तब प्रश्न यह होता है कि फिर यह इतने लंबे और जटिल अनंत काल से चलता है, यह अज्ञान का अंत कैसे हो। तो यह प्रश्न स्वयं ही अपना उत्तर है, अज्ञान का अंत कैसे हो। ज्ञान में इस सबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्रारंभ है। अज्ञान का स्वरूप जिसे विकसित हुआ है, यदि अनादि काल से अज्ञान चला है तो अज्ञान क्या तो विकसित हो जाए कि अपने को नहीं जाना, ध्रुव आत्मा को देकर के सत्ता को पूर्ण परिपूर्ण नहीं जाना, नहीं माना, ये उसका अज्ञान था। तो अज्ञान के कहीं ज्ञान का जन्म होगा, तो ज्ञान का अज्ञान का स्वरूप ज्ञान दिया, ऐसा अध्ययन अनाधिकार से चला है। अब ये प्रश्न जहाँ पर उठा है वहाँ पर यही उसका प्राण का अंत, अज्ञान के प्राण का अंत होने का शुरुआत हो गई। प्रबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्रारंभक है, क्योंकि प्रबल अज्ञान में ऐसा समस्त विचार होता ही नहीं। जहाँ पे प्रबल अज्ञान हो यहाँ पे ऐसा समस्त विचार के अज्ञान का अंत कैसे हो, विचार का जन्म ही नहीं होगा। अनंत के ज्ञान के प्रभाव में शुद्ध आत्मानुभूति संपन्न किसी ज्ञानी पर पुरुष का योग मिलने पर जो महान उद्यमशील आत्मा उनकी कल्याणी वाणी को हृदयंगम करता है, उनका अनादि का अज्ञान शिथिल होकर इस समस्त विचार में प्रवर्त होता है। ज्ञानी पुरुष के योग एवं उनकी वाणी मात्र से यह नहीं होता, ग्रहण गुरु की वाणी मन जिसे अपने ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ है उसे यह विशुद्ध चिंतन धारा प्रारंभ होती है। होती है गुरु की वाणी का मन, यही का मन। गुरु की वाणी को सुन लेता है, वो वाणी मात्र से नहीं होता, देखिए ज्ञानी गुरु के सुनो एवं उसकी वाणी मात्र से नहीं होता, बल गुरु की वाणी का फल जिसके अपने ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ है, गुरु का सहयोग मिला और उसकी वाणी सुनने उसके काम नहीं बनेगा, लेकिन वाणी का फल गुरुदेव का हृदय जिसके हृदय में बन गया, जिसके ज्ञान में प्रतिभाषित हो गया है, उसे यह विशुद्ध चिंतन धारा प्राप्त होगी। एक प्रश्न हमारा और हो सकता है, अज्ञानी को ज्ञान ही नहीं है, वो यह सब कैसे करता होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान का अभाव, ये बात अच्छी तरह से समझिए कि प्रत्येक समय उत्पन्न होता हुआ जो उपयोग है जो उत्पाद देने वाला उपयोग है उपयोग के अंदर में एक सामान्य उपयोग का जन्म होता है। जिस सामान्य उपयोग के अंदर में भगवान आत्मा आवाज गोपाल सभी को सदाकाल जानने में आता है, तो प्रति समय उत्पाद ज्ञान का होता है, न समय ज्ञान का होता है न मिथ्या ज्ञान का होता है, सामान्य ज्ञान का जन्म होता है। सामान्य ज्ञान जिस तरफ झुकता है चाहे दो तरफ झुके तो समय ज्ञान कहलाता है और सब तरफ झुके तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, लेकिन उत्तम होता है ज्ञान। तो सबके पास में ज्ञान है और सभी समय ज्ञान का जन्म होता है, अज्ञान का जन्म नहीं होता, मिथ्या ज्ञान का जन्म नहीं होता, प्रत्येक समय ज्ञान का जन्म होता है और जिसको विषय करे चाहे स्वयं अपन सबको विषय करे तो समय ज्ञान कहलाता है और फर्क उनसे करे तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उसके कहते हैं कि तो ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान का अभाव है, अज्ञानी के पास ज्ञान तो बहुत है, किंतु पर प्रत्याशी के कारण पर प्रत्याशी आपत्ति के कारण उसके ज्ञान का सूक्ष्म भी सूक्ष्म व्यवसाय भी पर में ही होता है। ज्ञान तो उसके पास भी बहुत है, अज्ञानी के पास भी ज्ञान का उत्पाद होता है, अज्ञान का उत्पाद नहीं होता। अज्ञान जिस तरफ मुड़ता है जिसको विषय बनाता है वो विषय भेद के समय ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का नाम को पाता। तो सबके पास में ज्ञान है और ज्ञान का जन्म होता है, अब उसकी वृत्ति के अंदर में क्या है, उसकी मान्यता के अंदर में क्या है, उसकी समझ के अंदर में क्या है, उसके विश्वास के अंदर में क्या है, उसके अभिप्राय के अंदर में क्या है, उसके मुताबिक पर्याय अपनी योग्यता के मुताबिक स्व और पर तरफ झुकती हुई स्व या पर को विषय बनाती हुई चाहे समय ज्ञान परिणाम की है चाहे निश्चय ज्ञान उसने कहते सूक्ष्म भी सूक्ष्म व्यवसाय ही पर में ही होता है, किंतु यही ज्ञान सदगुरु भगवंत से आनंद निकेतन प्रसत्ता की महिमा सूत्र उसके प्रति उग्र व्यवसाय करके समय ज्ञान में परिणामित हो जाता है, परिणत हो जाता है। कितनी बात जो उत्पन्न होता हुआ ज्ञान है वो सदगुरु भगवंत से सदगुरु मात्र नहीं सदगुरु भगवंत से आनंद निकेतन आनंद का जो धाम है आनंद की जो मूर्ति है ऐसी स्वसत्ता की महिमा सुनकर उसमें बाकी है कि स्वसत्ता और परसत्ता दोनों को सुनकर सत्ता की महिमा सुनकर उसके प्रति उग्र व्यवसाय करके सरकारी करते हैं समतल कंडीशन है उग्र व्यवसाय करके सबने ज्ञान में परिणत हो जाता है और अभिन्द्रिय आनंद का भजन करने लगता है। इसे करना क्या है स्वभाव की महिमा सुनी और सुनकर उसके प्रति उग्र व्यवसाय हुआ मैंने उसकी महिमा आई उसका अहोभाव कोई लंबी चोरी वार्ता नहीं है कुछ उसने मान रखा है कि कठिन है भाव जी कहेगा उसकी कठिन मानना ही कठिन है अभिमानी के ज्ञान का यह ज्ञात्मक प्रश्न है अज्ञान का अंत कैसे हो अज्ञानी के ज्ञान का जन इतिहात्मक प्रश्न अज्ञानी का अंत कैसे हो अज्ञानी का अंत कैसे हो ये प्रश्न कहा होता ज्ञान में होता है अज्ञान में नहीं होता कि ज्ञान ने अज्ञान का स्वरूप जान लिया ज्ञान ने क्या जाना कि मैंने अपने में अपनापन नहीं किया मैंने जाय को अपना नहीं जाना जाय को अपना नहीं माना ये मेरा अज्ञान तो ये मेरा अज्ञान से ऐसा ज्ञान नहीं जाना तो इस ज्ञान का एक प्रश्न कि अज्ञान का अंत कैसे हो, ये अज्ञान को एक खुली चुनौती है। इस प्रश्न में अज्ञानी को अज्ञान का स्वरूप विदित हो चुका है, विदित हो चुका है अज्ञान का स्वरूप क्या है, क्योंकि उसमें पर को जाना, पर को तो जाना ही नहीं, कैसे बोले जान सकता ही नहीं। अपने ज्ञान के अंदर में क्या होता है, मानता है पर को जाना, पर को तो जान ही नहीं सकता, जीवों का ज्ञान होता ही नहीं। ये चीज सापेक्षता में दिया का कहा जाए, लेकिन ज्ञान दिया का होता ही ज्ञान का स्वरूप तो समझता है, ज्ञान ज्ञान की जवाब का क्या है, ज्ञान का स्वभाव क्या है, ज्ञान के अंदर में जो कुछ भी रचना रखी गई वो ज्ञान की रचना है या योग की रचना। अगर ज्ञान की रचना है तो ज्ञान का है, ज्ञान का योग की सापेक्षता में निमित्त में बाहर में संयोग में उल्लेख में क्या है उसको बतलाने के लिए दिया का कहा गया, लेकिन वो है नहीं दिया का, है तो ज्ञान का। और सही में देखा जाए तो ज्ञान का ज्ञान आधार में ही होगा, ज्ञान होगा और ज्ञान तो आत्मा है, तो ज्ञान नहीं होता आत्मा होता है। अब उस ज्ञान में आत्मा को नहीं जाना, इसका नाम हो गया। अब ऐसा ज्ञान उसे उदित हो चुका है, मेरे में ज्ञान होता है और ज्ञान में आत्मा जन्म नहीं आता, ये मेरा ध्येय नहीं है, लोग मेरा ध्येय नहीं है। और अंदर से जाता है तो कहता जाए कि मेरा ध्येय नहीं है, जब तक जाए उसको ध्येय दीजिएगा तब तक ज्ञान ध्येय का संकल्प तो खड़ा रहेगा। जैक मेरा ये तो ये दूसरा रह गया और जानने वाला दूसरा रह गया तो बैठा हो जाएंगे, तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान तो आत्मा, ज्ञान तो आत्मा, तो ज्ञान के अंदर में ज्ञान भूल नहीं दिखता, तो ज्ञान के अंदर में अभेद आत्मा दिखता, जहां अभेद आत्मा दिखा तो ज्ञान में निश्चित रूप से वो हो इस आत्मा को मैंने अपना नहीं जाना, तो क्या होता है उग्र व्यवसाय होता है, मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण, मैं परिक्रांति में सूचित, ये बात कहते हैं स्वरूप विदित हो चुका है। अब वो समझने लगा है कि मेरी चैतन्य सत्ता तो अनादि अनंत पूर्ण ध्रुव अक्षयानंद स्वरूप एवं सर्वसंबंध विहीन है, और मेरी ही वृत्ति में उसे नस्व अपूर्ण दुखी अज्ञानी एवं पराधीन कल्पित किया है। इस बात को समझ लिया कि मेरी तो चैतन्य सत्ता है, अनाभिव्यक्त है, पूर्ण है, ध्रुव है, अत्यानंद स्वरूप है एवं सर्व संबंध है, अनाथ ही सर्व के संबंध है, उसके अंदर मैं कौन कौन से कदम कर्ता कर्म कदम रहे, कारण कार्य कदम रहे, निमित्त निमित्त कदम रहे और ज्ञाता भेद कदम रहे, किसी प्रकार का कदम चारों कदम रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कदम नहीं, सर्व कदम विहीन है ना, सर्व कदम विहीन है, सर्व कदम ये बहुत मुख्य बात है, अभूतपूर्व बात है, सर्व संबंध भी है, कर्ता कर्म नहीं कारण कार्य तो है, कारण कार्य नहीं ज्ञाता ही तो है, सारे के सारे उभरने वाले संबंधों की चर्चा है। कहा करते थे कि हम जब अपने अंदर में जाते हैं तो हमें हमारी बढ़िया यही दिखती, हमारा द्रव्य दिखता है, और जब बाहर आते हैं तो आपकी बढ़िया यही दिखती, आपका द्रव्य दिखता है। तो एक वस्तु के वैभव को देखने का जो विकास वो इतना अलौकिक है, इतना अद्भुत है कि जिसके अंदर में उपादान 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 के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ निमित्त की ओर देखे तो निमित्त भाव का जन्म, और मेरे भी भाव हो तो उसका निमित्त नाम पड़ेगा। भगवान की ओर देखे तो भगवान की भक्ति का नाम हो तो उस राग को निमित्त भाव कहकर भगवान को निमित्त का होगा, लेकिन अब निमित्त निमित्त की समझ ही नहीं जाओ तो ये कहते हैं सर्वप्रथम जीवन है और मेरी भी भक्ति है उसे नस्वर अपूर्ण दुखी अज्ञान एवं पराजय कल्पित किया है। यही मेरा अज्ञान था और अज्ञान आत्मा की पर्याय होने पर भी झूठा होने से कभी भी अनुशीलन के योग्य नहीं है, क्योंकि अज्ञान के अनुशीलन में कभी भी सही आत्मसत्ता की उपलब्धि नहीं होती। सीधी सी बात, इस प्रकार अज्ञान को स्वसत्ता विरोधी एवं नितान्त निश्चय मानकर अज्ञान एवं अज्ञान के प्रादुर्भूत पर्वतावी पुण्य एवं पाप की वृत्तियों एवं अनंत प्रसत्ताओं से एकत्व तोड़ता हुआ, किससे किससे एकत्व तोड़ता हुआ स्वसत्ता विरोधी, सबसे पहली बात करेगी स्वसत्ता विरोधी नितान्त निश्चय मानकर अज्ञान एवं अज्ञान से प्रादुर्भूत पर प्रस्तावलंबी पुण्य पाप की वृत्ति, पुण्य पाप की वृत्ति या प्रस्तावलंबी होती है और अनंत प्रस्तावों से एकत्व तोड़ता होगा एवं समस्त भेद ज्ञान के बल से स्वसत्ता में ही एकत्व एवं अहम की स्थापना करता हुआ अपने अविराम चिंतन द्वारा जब महामहिम आनंद निकेतन निज चैतन्य सत्ता में ही अलग जगाता है तो सदा से पुण्य पाप स्थिति पर सत्ता में परा श्रद्धा का अहम कंपित एवं विगलित होकर शरण को प्राप्त होता है। करना क्या होगा, समस्त भेद ज्ञान के बल से स्वसत्ता में ही एकत्व एवं अहम की स्थापना, भेद ज्ञान जिसको कहते हैं जिसके अंदर में भेदों का ज्ञान ना हो, जिसके अंदर में अभेद का ज्ञान ना हो, स्वाभाविक अभेद ऐसा अपना जो परमात्मा तत्व है ना, ठीक है ना, कहा स्वसत्ता में ही एकत्व हो, स्वसत्ता में एकत्व माने क्या अभेद का ज्ञान, जो त्रिकाली अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद है उसमें एकत्व एवं अहम की स्थापना करता हुआ अपने अविराम चिंतन द्वारा जब महामहिम आनंद निकेतन नित्य चैतन्य सत्ता में ही अलग जगाता है तो सदा से पुण्य पाप व्यक्ति पर सत्ता हो मैं परा श्रद्धा का अहम कंपित एवं विजोलित होकर स्खलन को प्राप्त होता है और लोग का अपनी ध्रुव अपनी सत्ता में ही अहम से होता है, वहां से लोग ज्यादा पर सत्ता से और स्वसत्ता जो है अपनी ध्रुव अपनी सत्ता जो है चैतन्य परिपूर्ण सत्ता जो है उसके अंदर में अहम से होता है। स्वरूप के अहम में धारावाही क्षत्रिय इस गौरवमय व्यक्ति को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। गौरवमय धारा है अपने स्वभाव की विधान है वस्तु से कैसे प्रसिद्ध होना कैसे जम जाना कैसे रम जाना उसका जो विधान है सरलतम विधान सुंदरतम ज्ञान गौरवमय ज्ञान कितने सरल शब्दों में कितनी सरल भाषा के अंदर अपनी स्वसत्ता में अहम करता हुआ महामहिम पदाधारण निकेतन से अलग जगाता हुआ धुन जगाता हुआ अस्थि की मस्ती में मस्त रहता हुआ स्वरूप के अहम में धारावाहिक सक्रिय गौरवमय वृत्ति कोई ही सम्य दर्शन कहता है। सम्य दर्शन के प्राप्त करने के लिए अज्ञान का नाश कैसे हो, ऐसा जो प्रश्न उठा वो ज्ञान का ही स्वरूप, जिसने अज्ञान का स्वरूप जान लिया और ज्ञान ने सही रास्ता जानकर अपने स्वभाव की व्यवस्था को समझकर उसके अंदर में अहम करता हुआ पर सत्ता से वापिस आता हुआ उसको स्खलन को प्राप्त होता हुआ दोनों में जो सत्ता के अंदर में लीन होता हुआ जो परिणाम का जन्म होता है उसका नाम समय दर्शन है। ऐसा समय दर्शन सहज मात्र में उत्तम होता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाता। स्वभाव की महिमा में, स्वभाव की गौरव गाथा में सहज मात्र में उत्तम होने वाला समय सहज मात्र में सबके परिणाम में उत्पन्न हो, इसी मूल्य होना के साथ में।